हाँ जी, आज क्या विचार है?
बुद्धि का संभाव में स्थित हो जाना, ये कई विषयों में कई सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं तो ये बात समझ आए, चाहे वो भक्ति मार्ग भक्ति का विषय पढ़े या धर्म का विषय पढ़े।
बुद्धि का संभाव में स्थित हो जाना, ये क्या स्थिति है? आज हमारी बुद्धि जिस भाव में स्थित है उसको कहते हैं विषम भाव में हमारी बुद्धि स्थित है, और विषमता प्रकृति के अंदर है और समता ईश्वर के अंदर है। क्योंकि हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं इसलिए हमारी बुद्धि प्रकृति में स्थित रहेगी, स्वाभाविक बात है। और विषमता क्यों है? क्योंकि प्रकृति का की रचना तीन गुणों से हुई है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और हर जीव के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। यदि जीव है तो उसमें तीन गुण होंगे। डोमिनेट कोई गुण कर सकता है, किसी के अंदर सत्वगुण प्रधान है, किसी के अंदर रजोगुण प्रधान है, किसी के अंदर तमोगुण प्रधान है। तमोगुणी जो व्यक्ति होगा वो पाप करेगा, उसके कर्मों से दूसरों को कष्ट पहुंचेगा। रजोगुणी प्रधान व्यक्ति जो है वो भोगलास बहुत करेगा, पैसा बहुत कमाएगा, सुखो सुख प्राप्ति के लिए जिएगा। उसका जो प्राइम मोटिव है वो इंद्रियों के सुख भोगना है, रजोगुणी जीव। और जो सतोगुणी जीव है उसके कर्म अच्छे होते हैं, ईश्वर के भजन में ही मन लगता है उसका, और उसके कर्मों से दूसरों को सुख मिलता है, उसके अंदर शालीनता होती है, शील स्वभाव होता है उसका, ये सारी बातें होती हैं। तो सतोगुण ही बाद में, सतोगुण का मतलब होता है कि हर स्थिति से अपने आप को ऊपर ले जाना। सतोगुण का जो प्रभाव होता है वो हर स्थिति से अपने आप को ऊंचा उठा लेना। इसलिए ये जो सतोगुण है यही जीव को ट्रांसेंड करता है, पार कर देता है गुणों के चक्र से। ये व्यक्ति भी ही ईश्वर भक्ति में सफल हो सकता है। तो जो सतोगुण है वो
मरा नहीं है, अच्छा
तो सतोगुण है वो व्यक्ति को हर गुण से ऊपर उठा देता है। इसीलिए सब कुछ कहते हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसा जीवन अपनाओ ताकि आपके जीवन में सतोगुण प्रधान हो जाए। तो हम तो कोई निर्गुण तो है नहीं, कोई सभी गुणों में है, सभी अपने अपने स्वभाव के बंधन में, जो जैसा पास्ट करके आया है उसका वैसे ही मन बचपन से लेके आया है। इसलिए महाजी ने 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया, ये इसीलिए दिया कि व्यक्ति पहले रजोगुणी भी है मान लिया, या यूं कहिए रजोगुण प्रधान है उसके अंदर, तो मनुष्य तो वो भी है, तो हक तो उसका ही बनता है सुख को प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें चैन तो मिलना नहीं उसको, तो कैसे प्राप्त करेगा वो? तो उसके लिए प्रभु ने रचना रची कि सारा जो योग मार्ग पे चलने का रास्ता है वो 5 नियमों से होकर जाता है। ये यूनिवर्सल है, कोई ऐसा नहीं है कि महाराज जी की देन है या कोई अन्य की सब कुछ देन। उन्होंने इसको एक आजकल के मतलब कि जो वातावरण है संसार का उसके हिसाब से उन्होंने एक सिंप्लीफाइड तरीके से 5 नियमों में उसको बांध के रख दिया सामने। तो स्टार्ट उन्होंने सादगी से किया है, क्योंकि बंधन हमको कहा है, हमको जो है मान लिया मैं आज रजोगुणी हूं तो कल को मैं तमोगुणी हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। यदि मैं सतोगुण की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं तो ये रजोगुण ऑटोमेटिकली तमोगुण में बदल जाएगा। इसलिए देखा होगा जितना जो देश भी भोगवादी बन जाता है उसका पतन हो जाता है, हर दुनिया के नक्शे से वो देश मिट जाता है या काफी पतन के रास्ते पर चला जाता है जो भोगवाद के क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। जैसे जर्मनी पहुंचा भोगवाते क्लाइमेट मटीरियल, और आपका एथेंस पहुंचा वो नीचे आ गया, इंग्लैंड पहुंचा वो नीचे आ गया, सारी दुनिया में यही हमेशा चलता है। और अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका भोगवाद क्लाइमेट से पहुंचा है, तो आप देखिए कि सारे राष्ट्र को दबाते ही रहता है वो अपनी नीतियों से। उनके हिसाब से वो नीति ठीक है, जो जिसको सूट करती है वो नीति ठीक होती है उसमें, लेकिन प्राकृतिक लिहाज से वो नीति सारी गलत है। तो भोगवाद का नतीजा क्या निकला कि पॉल्यूशन अमेरिका के कारण इतना बढ़ा कि आज अमेरिका कह रहा है कि मेरा जीवन, मेरे लोगों का जीवन खतरे में है, इसलिए सब लोग पॉल्यूशन कम करो। जो उसकी देन है सबसे ज्यादा, नहीं अब घबरा रहा है, घबरा कर कह रहा है कि सब पॉल्यूशन कम करो। तो भोगवाद का नतीजा निकलना ही यही है, अपने को भोग प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया की नीति बदलने को तैयार है वो, शस्त्रों के जोर पर दबाने को तैयार है वो, अपने गुट में शामिल करने को तैयार है। ये नीतियां क्यों बनाई जाती है? ताकि हमारा भोगवाद बचा रहे। इसका नतीजा निकलता है कि दूसरे लोग फिर जलते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर वो कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस रास्ते पर वो चला। फिर चाइना ने नकल करनी शुरू कर दी, अब वो भी लोगों को आके दिखाने शुरू कर दिया। देखा नहीं यार, चारों तरफ वो उसका वैसी इमेज बनी हुई है दुनिया में कि पावर बढ़ाता चला रहा है, चारों तरफ जो है वो अपनी जो है जो लड़ने की शक्ति है वो बढ़ाता चला रहा है, और दुनिया खतरा महसूस कर रही है, खतरा महसूस कर रही है अपनी सुरक्षा के लिए वो भी इंतजाम करेगी, तो ये कंपटीशन चलते जाता है। तो ये जो विकास है ये भोगवाद का, ये दुनिया में चैन पैदा कर रहा है या बेचैनी पैदा कर रहा है? खुली आंख से देख सकते ना, तो दुनिया में बेचैनी पैदा कर रहा है ना। तो चाहे ये एक देश की बात है, चाहे ये एक व्यक्ति की बात है, चीज है प्रिंसिपल एक ही काम कर रहा है। तो ये रजोगुण जो है ये एक दिन दुख में बदल जाता है, बदलना ही बदलना है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण में बदलेगा ऑटोमेटिकली, ये क्रिया होगी। इसीलिए गीता ने निर्णय दिया कि रजसः तु फलम दुःखम्, रजोगुण का परिणाम दुख है। शास्त्रों हजारों साल पुराना लिखा हुआ है, लेकिन ऋषि की आंख खुली वो जानता है। हम भी गृहस्थ में यदि हमने भोग इकट्ठे कर लिए और बच्चों को भी वही ट्रेनिंग दे दी, बेटा बहुत कमाना, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, ऊंची पोस्ट पे जाना या ऊंचा बिजनेस करना, यही शिक्षा दी है बच्चों को, ट्रेनिंग दी है, तो ये उनका भविष्य के लिए हमने एक दर्दनाक स्थिति पैदा कर दी, उनकी आंख भोगवाद की तरफ खुली रहेगी, बाकी तरफ से बंद हो जाएगी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जिन्हें बहुत पढ़ाई करनी है फुर्सत मिलेगी इसको, जिन्हें बहुत कमाई करनी है फुर्सत मिलेगी इसको। ईश्वर के मार्ग के सोचने की, शास्त्र को पढ़ने की या ईश्वर का सिमरन करने की फुर्सत मिलेगी इसको? नहीं मिलेगी। तो घोर रजोगुणी बन जाएगा वो और पतन हो जाएगा। इसलिए माई कहते प्रेमी, गृहस्थ जीवन में मर्यादा का जीवन चाहिए। उस मर्यादा के जीवन में ही परिवार की भी सुरक्षा है और तेरी भी सुरक्षा है, क्योंकि मर्यादा का जीवन में तेरे पास वक्त बचता है, बुद्धि यह है भोगों के हर्षमय चिंतन से हटकर कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग का श्रवण कर सकती है, ताकि वो होश में आ जाए कि ये जीवन यदि मैं सांसारिक दृष्टि से देखूं तो सतोगुणी बनने के लिए मिला है मुझे, ये जीवन सतोगुणी बनने के लिए मिला है, और मैं सारी प्लानिंग जो कर रहा हूं अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में वो घोर रजोगुणी बनने की कर रहा हूं, और ये मैंने सुना ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, यदि पढ़ा भी मैंने किसी से, आज तक इतने गीता पे लेक्चर सुने किसी ने ये नहीं कहा कि रज सहतु फलम दुख। जब खुद गीता पढ़ी ध्यान से तब साफ लिखा था वहां, मैंने कि इतने ये सब ये स्टेज शो होते हैं सत्संग के नाम पर, ये तो घोर रजोगुण है, ये घोर रजोगुण नहीं है। सत्संग के नाम पर इतने बड़े बड़े स्टेज शो होते हैं, ये घोर रजोगुण नहीं है, इसका परिणाम तो दुख है। ये कौन सा धर्म सिखा रहा है? वो तो धर्म सिखा रहे हैं, लेकिन कौन सीख पाएगा ऐसे धर्म को? उसके लिए वातावरण भी तो चाहिए ना सर, वातावरण तो वैसा चाहिए। तो क्यों नहीं कहते वो आचार्य लोग रजसातु फलम दुखम, क्योंकि रजोगुण में डूबे हुए हैं, खुद गुरु बनकर रजोगुण का फायदा उठा रहे हैं। महाजी कहते थे प्रेमी, ये आज के जो आचार्य है ना, ये गुरु बने बैठे, ये गृहस्थियों से ज्यादा भोगवादी है। हमारे पास तो, हमारे पास तो भोग का सामान कम है, गुरु के पास एयरक्राफ्ट तक है, अपना निजी एयरक्राफ्ट, अपना निजी हेलीकॉप्टर है, जहां चाहे जाए। इसीलिए ये तो प्राकृतिक विज्ञान है ना, ये तो साइंस में जो विज्ञान लिखा वो तो दूसरा है। उसके बाद तो महाजी ने साफ लिख दिया, संतरास में लिख दिया कि प्रकृति की ज्यादा खोज करना हानिकारक है, क्योंकि प्रकृति की जितनी ज्यादा खोज करोगे उतने नए से नए आपको प्राकृतिक सूत्र आपके हाथ में आएंगे। प्रकृति की रचना तो जो भी सूत्र है, चीज कैसे बन रही है, कैसे बिगड़ रही है, नई नई चीज आपको पता लगेंगे, उससे आप नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, भोग सामग्री बनाओगे, फिर आप फिर उसको भोगोगे, तो प्रणाम क्या निकलेगा? इस विज्ञान का प्रणाम क्या निकलेगा? सर्वनाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जो आप देख रहे हो, जो भी इस साइंस का सूत्र बनता है वही सूत्र सर्वनाश का कारण बन जाता है। तो एटॉमिक एनर्जी तो अच्छी चीज थी ना, लेकिन एटॉमिक एक्सप्लोजन देख लो, सारी दुनिया बारूद के गोले पे खड़ी हुई है इस एक खोज के कारण, सारी दुनिया डर रही है। तो ये मनुष्य जो है, ये प्राकृतिक मनुष्य है और ये स्वभाव से ही रजोगुणी है, स्वभाव से हर व्यक्ति स्वभाव से रजोगुणी है। अब कैसा वो बन पाता वो अलग बात है, स्वभाव से ये है कि मुझे सुख मिलना चाहिए और सुख भोग की सामग्री मिलना चाहिए, उसके लिए जो मुझे पैसा मिलना चाहिए, स्वभाव से सुख का यही है, यही प्लानिंग है, यही सोच है, यही तैयारी है। तो रजोगुण की सोच है, रजोगुण का विचार है, रजोगुण का स्वभाव है संसारियों का, इनके हाथ में यदि रिसर्च आ गई, प्रकृति के सूत्र आ गए, तो ये मिसयूज करेंगे इसका या गुड यूज करेंगे उसका? तो रजोगुणी व्यक्ति उसका गुड यूज नहीं कर सकता, उसका मिसयूज ही करेगा। तो इसीलिए संत वाणी कह रही है कि मर्यादा का करे खान पान, काहे चाहे घर में भरे अंबार, भाग्यवश प्रारब्धवश तुझको यदि भोगविलास की सामग्री मिल गई, धन संपत्ति मिल भी गई, लेकिन तुझको परमिशन नहीं है भोगने की, कि मर्यादा का तुम्हें खान पान या अर्थात उसका उपभोग करना है जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि तूने सतोगुणी बनना है ना, सत की तरफ जाना है, सत की तरफ। जो जो भी व्यक्ति भी नहीं जा रहा है सत की तरफ, उसका पतन हो रहा है, निरंतर हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। तो सोचिए, जिसका पतन हो रहा है उसका मानसिक क्लेश घटेगा या बढ़ेगा? ऊपर से हम बड़े चिकने चुपड़े दिखाई पड़े, बड़े खुशहाल दिखाई पड़े, लेकिन हमारा दिल जानता है अंदर से, मेरे दिल, मेरा मन कैसा फटे हाल है, मेरा मन जानता है मैं कैसे परेशान, क्योंकि मैं प्राकृतिक नियम के विरुद्ध चल रहा हूं। ईश्वर ने यह प्रकृति की रचना की है, तो प्रकृति में मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य के अंदर खुद भी तो बैठा है वो। कृष्ण कह रहे हैं कि हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं। तो इस देह के अंदर मन है यदि मेरा, जो स्वभाव के अधीन है या प्रकृति के अधीन है, तो इसी देह के अंदर प्रकृति से ऊपर परमात्मा भी तो है। तो गुरु मैं इसीलिए बनाता हूं कि मुझको परमात्मा का महत्व पता लगे, प्रकृति का दोष पता लगे। गुरु का और क्या काम है बताऊं? गुरु का एक ही काम है कि गुरु बनाने का मतलब हुआ, गुरु से मैंने अब ये सीखना है कि जीवन में परमात्मा का क्या महत्व है और प्रकृति का क्या दोष है, प्रकृति के चक्र में फंसकर मेरी क्या बर्बादी होनी है, ये गुरु ही सिखाएगा। और कौन सा दुनिया तो सिखा ही नहीं सकती, सारी दुनिया तो प्रकृति के अधीन होकर जी रही ना, और गुरु ईश्वर के अधीन होकर जी रहा है। तो गुरु में उसमें तो संसारी गुरुओं में एक ही अंतर था, तो वो गुरु ही हमको इस मन के बंधन से छुड़ा सकता है, क्योंकि मन के अंदर तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मन इसके अधीन ही सोचता है, इसके अधीन ही कर पाता है। तो आपका जो ये सांसारिक जीवन है, जब तक पहला ही सूत्र उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा कि सादगी से जीना है, सादगी का मतलब मैंने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, शौक पूरे नहीं करने, बस इसी का मतलब है। मैंने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आवश्यकताएं पूरी करनी है, शौक पूरे नहीं करने। किसी के बारे में, चाहे पहनने के बारे में शौक हो, चाहे खाने पीने के बारे में शौक हो, चाहे घूमने के बारे में शौक हो, चाहे देखने के बारे में शौक हो, या सुनने के बारे में शौक हो, कैसे भी शौक हो, शौक पूरे नहीं करने, नहीं करने मैंने आवश्यकता पूरी करनी, इसका नाम है साधन। इसमें आइटम गिनने की जरूरत नहीं है, हजारों आइटम है, कितने जोड़ोगे इसमें, बेसिक चीज ये। तो जिसने ये सूत्र समझ लिया, अब बताओ मुझे क्यों सोचेगा मैं बहुत सारी कमाई करूंगा, बच्चों के दो जन्म की तैयारी करके रख जाऊंगा। अरे पहले ही सोच लिया मेरे बच्चे निकम्मे निकलेंगे, दो जन्म की तैयारी मैंने करनी है उनकी। अच्छी बात है, यदि निकम्मे हैं तो संसार के जूते खाएं, वो संसार के कष्ट झेले, वो निकम्मा आदमी इस कष्ट झेलेगा तो कुछ तो उसका उसके अंदर डेवलपमेंट की सोचेगा वो। और निकम्मे को यदि तैयार माया मिल गई तो क्या करेगा वो तो अपना घोर पतन करेगा। इसीलिए बच्चों को तो संघर्ष कराना चाहिए ना, कि आराम तलवी बना देना चाहिए। तो अब बताइए ज्यादा पैसे की किसको जरूरत? अज्ञानियों को जरूरत है, जिन्होंने पतन का रास्ता चुन रखा है उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिन्होंने उत्थान का रास्ता चुना है उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है। इसीलिए सोच समझ के आदमी जो है वो अपना वक्त संसार में खर्च करता है संसारिक कमाई के लिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 घंटे का काम क्यों बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स जो थे कम से कम वो सादे लोग थे, आज जैसे लोग बिगड़े नेता नहीं थे, वो सादे लोग थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि 8 घंटे जो है काम के हैं ये, इसका मतलब 16 घंटे का बाकी जो बचे वो अपने उत्थान के लिए। वो उत्थान ऐसी तो होगा भी, घर में शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, पूजा पाठ करोगे, निष्काम सेवा दीन दुखियों की करोगे, समझे, वक्त पर सोओगे, वक्त पर खाओगे, वक्त पर घर 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 वालों की देखभाल भी करोगे, कुछ समाज की भी देखभाल करोगे, इन कामों में भी वक्त चाहिए नहीं चाहिए? तो इसका मतलब 8 घंटे हमको स्वार्थ का काम करने के लिए, पैसे की कमाई के लिए, भोग कमाई के लिए दिए गए थे हमको, और 16 घंटे जीवन रक्षा के लिए दिए गए, जीवन सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार जीने के लिए दिए गए थे, वो हमने सब चौपट कर दिए। आज पढ़ाई के लिए भी घंटे कम है, कमाई के लिए भी घंटे कम है, भोग विलास के लिए भी घंटे कम है, और नतीजा क्या हो रहा है? जितना समाज पढ़ता जा रहा है, जितना समाज अमीर होता जा रहा है, उतना ही समाज का शोषण बढ़ता चल रहा है। सारे एम्प्लॉयज देख लो ना, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे वो बैंक लाइन में हो, चाहे वो अन्य किसी हो, देखो बॉस छोड़ता ही नहीं, वो चाहता है ना ये छुट्टी ले ना ये घर जाए, लगा ही रहे काम। ये स्थिति हो गई नहीं हो गई? हर एम्प्लॉय सोचता है मजबूरी में मुझे छुट्टी मिलती है, बहुत मजबूरी में, मजबूरी में मुझे ऑफिस उठना पड़ता है, काम पेंडिंग ही रहता है। ये स्थिति आ गई नहीं अभी? ये कहां से आई है? अल्टीमेटली भोगवाद बढ़ा उसी से आई है। पहले भी लोग सर्विस करते थे, पहले भी बैंक चलते थे, पहले भी लोगों का पेट पलता था, आम व्यक्ति में टाइम से ड्यूटी करता था, टाइम से आ जाता। लास्ट 60 ईयर्स की लाइफ तो हमको याद है, कम से कम 70 की आयु तो 10 साल में तो आदमी को जरा थोड़ी रीडिंग की ही योग्यता आती है उसके अंदर, क्योंकि 60 साल की लाइफ तो हम देख ही चुके हैं कि ये हमारा समाज क्या से क्या हो गया। तो इसमें खुश होने की कोई जगह ही नहीं है कि मेरी सड़क घर शहर की सड़कें बड़ी चौड़ी हो गई, पक्की बिल्डिंगें बन गई, समझ नहीं, देखने में तो लगता है कि बड़ा खुशहाल हो गया, शहर बस गया, बहुत बड़ा हो गया, बड़े फख्र से कहते हैं मेरा शहर इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है, ये फैसिलिटी है, लेकिन जीने लायक शहर नहीं रहा, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इतनी भीड़ बढ़ गई, इतने खतरे बढ़ गए, समझ नहीं, ये शहर जो है नरक कुंड बन गया, इसको विकसित शहर कह रहे हैं, ये नरक कुंड बन गया। छोटे से शहर में कितनी चैन की लाइफ लोग बिताते थे बचपन में, याद है आपको? तो अब आप देखते हो खतरा ये है कि कितनी चौड़ी सड़कें हो जाएं, ऑटोमोबाइल इतना बढ़ जाता है कि हर सड़क छोटी, तो ये अल्टीमेटली रजोगुण का परिणाम है। तो इसीलिए यही देश है, धर्म प्रधान देश है, यहाँ भोगवाद बढ़ने के बाद हर चीज छोटी पड़ती चली आ रही है। पानी की भी कमी होती जा रही है, बिजली की भी कमी होती चली आ रही है, ट्रांसपोर्ट की भी कमी होती चली आ रही है। वैसे गिनने में चीजें बढ़ रही हैं। तो मनुष्य की मुसीबत कम हो रही है या बढ़ रही है? तो ये सूत्र गीता का सत्य है या नहीं है कि रज साहतु फलम दुखम? तो महाराज जी ने भी लिखा रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। तमोगुण से दुख ही है, दुख दुख ही। तो इसीलिए बड़ी गहराई से सोचने की बात होती है। हमने पढ़ लिया, मान लिया गीता पढ़ रहे हैं, गीता का सूत्र पढ़ लिया रज साहतु फलम दुखम, अब हमने आगे बढ़ गए, तो वो सूत्र है उस पर तो कम से कम आप कम से कम 2-4 साल तो मनन करो उसके ऊपर। 2-4 साल मनन करोगे और ध्यान से मनन करोगे, सोचोगे, हर एंगल से सोचोगे कि ये वेद व्यास ने ये सूत्र क्यों लिखा, भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान क्यों दिया, तब शायद इस निर्णय पे पहुंच जाओ जिस निर्णय पे सब कुछ ऑलरेडी पहुंच चुके। तो महाराज जी ने तो इसी सूत्र का डिटेल्स लिखी थी। अब देखो ये महाराज जी कहते हैं ना गीता लिखी मैंने, तो अब आपको ये रजसाहतो फलम दुखम इसको यदि सीखना है आपने तो आप समता विलास के 2 चैप्टर पढ़ो, एक भोगवाद स्थिति जो योग मार्ग बोध में है और एक वासना विवेक में, पहला वासना विवेक, वासना छेदन विवेक, वासना अभाव विवेक है ना, तो वासना विवेक जो पहला है और एक भोगवाद स्थिति, ये 2 चैप्टर पढ़ो, इसकी डिटेल्स है वो रजसाहतो फलम दुखम, तब आपको पता लगेगा कि गीता क्या कह रही है। गीता की देखिए 4th लाइन है ये, एक श्लोक की 4th लाइन है ये, और इस पे महाराज जी ने 2 चैप्टर लिख दिए संतरास, क्योंकि सत्पुरुष जानता है कि कितना घोर भोगवाद आने वाला है, सारा संसार इसमें डूबा हुआ होगा और इस डूबने से कितनी बेचैनी इसके अंदर होगी, ये सत्पुरुष की आंखें देख सकती है। हमारी यहाँ तो अंधी, कौन बचाएगा इसको? ईश्वर ही बचाएगा भाई, ईश्वर के जीव है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, कौन बचाएगा हमको? जिसके अंश है, जो हमारा पिता है वही तो बचाएगा। बालक यदि डूब रहा है ज्ञान का में तो पिता ही बचाएगा उसको, इसलिए ईश्वर ही कृपा करता है, फिर वो संसार में अवतार लेता है, जीवन कराता है, फिर शास्त्र की रचना करता है। तो जैसे वक्त की जरूरत होती है वैसे वो शास्त्र की रचना किया। इसलिए गीता को समझना है तो पहले संत अवलास समझो, सारी गीता समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट गीता समझ में आने वाली नहीं। जिसने संत अवलास समझ ली वो समझिए दुनिया के सारे शास्त्रों का मास्टर हो गया, जिसने संत अवलास एक किताब समझ ली। तो ये वक्त की विशेषता होती है, ये प्रभु की लीला होती है, ये वही जानते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को जो है वो ज्ञान दिया गया। लेकिन वो श्रद्धा, उस क्लाइमेक्स की श्रद्धा भी होनी चाहिए, लापरवाही से पढ़ने वाली चीज नहीं है। इससे मेरी जिंदगी नहीं, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, सबकी जिंदगी बननी है। तो यदि मुझको मौका मिला मैं तो समझ लूं, यदि मैंने ठीक तरह से समझ लिया तो शायद मेरा ज्ञान किसी के काम आ जाए, आ सकता नहीं आ सकता। तो ये ज्ञान मेरे बच्चों को जब काम आएगा तब उनका उद्धार होगा, तब वो मुसीबत से बचा पाऊंगा मैं उनको। तो ये ज्ञान तो जल्दी से जल्दी सीखने की चाहिए। तो सोचो कि जब ये व्यक्ति ये 5 नियम के मार्ग पर चलता है तब जाकर धीरे 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 वो जो है वो सतोगुण की ओर अग्रसर होता है। और ये 5 नियम एक साथ पालन करने पड़ते हैं, सादगी के साथ साथ सत्य का पालन। सत्य का पालन का मतलब होता है कि एक ईश्वर पर भरोसा, एक ईश्वर पर विश्वास कि सर संसार उसकी आज्ञा में चल रहा है, और इसीलिए भयभीत ना होते हुए, निडर रहते हुए उस एक ईश्वर पर भरोसा करके अपने व्यवहार में ईमानदारी बरतना। सारी दुनिया चालाकियां कर रही है तो मैं भी चालाकी करूं, ये परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की चालाकियों का मैं शिकार हो जाऊं, इसका मतलब ये नहीं। मैंने जो है वो वैसी मकारियां नहीं करनी है जैसे कि संसारी लोग करते हैं, मैंने ठीक व्यवहार करना है, समझ नहीं, और हेरा फेरी नहीं करनी है, उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि मैं उसके लिए जी रहा हूं ना, ये दुनिया का मालिक ईश्वर है तो उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, तो अंदर ही बैठा हुआ है, मुझको परमिशन नहीं है ये कार्यां करने। तो व्यवहार में शुद्धता, बोलचाल में शुद्धता, समझ में, और एक ईश्वर पर भरोसा, तो इस तरह सत्य का पालन करना है। सेवा की बात कर रहे हैं तो वासना का जो मार्ग, निवृत्ति का जो मार्ग है वो सेवा से होकर जाता है। पहले सादगी आ गया भोग मर्यादा में, तो वासना तो आपकी मर्यादा में तो आएगी नहीं, आएगी सादगी से, लेकिन सेवा के द्वारा आपका स्वभाव बनेगा। क्या बनेगा कि हम सोचते ना कि लोग मेरे लिए सोचें, लोग मेरे लिए करें, माता पिता का क्या कर्तव्य है मेरे प्रति वो तो याद रहता है, मेरा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है वो भूला रहता है, तो सोसाइटी का, देश का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है वो तो मैं याद रखता हूँ, अधिकार मांगता हूँ, मेरा देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो भूला रहता हूँ। तो ये उल्टी गंगा बह रही है मेरी, ये स्वार्थ के कारण। तो मेरा जो जीवन है वो स्वार्थी है, स्वार्थी जीवन से मुक्ति पाने के लिए निष्काम सेवा का सूत्र सब कुछ देते हैं, तू निष्काम सेवा करना सीख। सारी चाहता दुखी जीवन है, कोई किसी काम परेशान है, किसी काम परेशान है, विचार से सेवा कर सकता है विचार से कर दे, वो मन की सेवा हो, धन संपदा से सेवा कर सकता है तो आर्थिक सेवा कर दे, शरीर से सेवा कर सकता है सामर्थ्य कोई शरीर से सेवा कर दे, तो तन मन धन से तू निष्काम सेवा करना सीख, उसका बदला मत ले, तो व्यापार हो गया फिर। मैंने जो सेवा की उसका मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको मुझे पता अंदर से मुझे देने वाला परमात्मा है, उसने जैसा प्रारब्ध दिया उसके अनुसार मुझे मिलेगा, समझ नहीं, संसार का इसमें कोई बोली नहीं। तो सेवा के माध्यम से व्यक्ति की जो स्वार्थ का जो इंस्टिंक्ट है उसके अंदर वो वीक पड़ जाता है, और नहीं सेवा करेगा नहीं, सादा भी रहे भले ही वो, लेकिन स्वार्थ का इंस्टिंक्ट उसका वीक नहीं पड़ेगा। स्वार्थ भावना जो है ये कमजोर निष्काम सेवा से ही होती है, इसलिए सेवा जरूरी है। हालांकि प्रकृति को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर के अधीन है, ये प्रकृति चक्र ऑटोमेटिकली उसके हुक्म में चल रहा है, चीजें बन रही हैं बिगड़ रही हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझको अपने कल्याण के लिए सेवा जरूरी है, अपने कल्याण, दूसरों का किसी का भला हो रहा है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है, लेकिन मैं उसका अहंकार ना करूं कि मैं लोगों का कल्याण कर रहा हूं, मुझे अपने कल्याण के लिए सेवा करनी जरूरी है, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं और ये स्वार्थ भावना बिना सेवा के नहीं जा सकती। इसीलिए वो तीसरा सूत्र महावीर दे रहे हैं। चौथा सूत्र सत्संग का, सत्संग का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों का संग करना जो सतमार्ग पर चल रहे हैं। सबसे बढ़िया संग तो गुरु का है, यदि किसी को भाग से मिल जाए, और दूसरा सत्संग का तरीका है ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा जो शास्त्र की रचना की गई है उसका गहराई से मैं अध्ययन करूं और मनन करूं, और तीसरा जो है जिस स्थान पर ऐसे शास्त्रों का निर्णय होता हो, ऐसे शास्त्रों को समझाने की प्रक्रिया चलती हो, उसका नाम है सत्संग। ऐसी जगह जाऊं उन शास्त्रों के मन को, जो अपनी बुद्धि नहीं है तो दूसरे की बुद्धि से सीखें, तो इसीलिए ऐसे लोगों का संग करने से भी वही विचार विमर्श होगा, संग बैठे हैं तो विचार विमर्श चल रहा है, ऐसे प्लेस पे आए हैं तो ऑटोमेटिकली मिलना नहीं मिलना, और किसी भोगवादी जगह पे चले जाए हमेशा विचार मिलेगा। इसीलिए ये तीन तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे लोगों का संग करना, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, या ऐसे स्थान पर जाना जहाँ इस प्रकार का शास्त्र को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके बिना आप कैसे आपका विकास होगा, इसके बिना विकास ही नहीं हो सकता। और पांच जी महाजी बता रहे हैं सत्संग, क्योंकि ये जो चारों काम कर रहे हैं वो सत्संग के लिए ही तो कर रहे हैं। अभी हम सिमरन अपने मन के भोगों का, मन की वासना का या मन की इच्छाओं का कर रहे हैं सिमरन, क्योंकि हमारे अंदर संकल्प उठते हैं इन्हीं के लिए होते हैं। अच्छी पढ़ाई करने के लिए संकल्प उठेगा, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो भाई, पैसा कमाने के लिए, तो भोगों का संकल्प है। बच्चों का विकास के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लानिंग करो लंबी चौड़ी किस लिए, उनके भोग पूरे हो जाए, सारा का प्रोग्राम पूरा पूरा भोग बढ़ाने का, भोग पूरे करने का है, तो चाहे उसमें एजुकेशन हो चाहे परिवार का पालन हो, कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे सर्विस हो, चाहे व्यवसाय हो, सारा आज टोटल इन्वॉल्वमेंट आपका एक ही है, ये वन पॉइंट प्रोग्राम है कि भोगों की वृद्धि, भोगों की प्राप्ति। तो ये भोगवादी जीवन का हमारा सारा सारा चलन है। तो इसीलिए मन में उसी के संकल्प, जैसी बैठोगे कोई ना कोई संकल्प आद हो उठ रहा है मन में, और सोचने में लग जाओगे, प्लानिंग में लग जाओगे। तो 24 घंटे की इस जीव की सोच, इस जीव का बंधन भोगों का ही है, इसके ऊपर हटके कोई है ही नहीं प्रोग्राम के पास। तो प्रकृति के बंधन में है ही नहीं 24 घंटे की जीव। तो इसीलिए स्पष्ट कहते हैं कि ये तो तीन गुणों से, ये तो जो प्रकृति है इसका बंधन तो जीव के लिए क्लेश देने वाला है, मानसिक क्लेश में जीव ग्रस्त रहता है। इसीलिए जो इस तीन गुणों से मुक्त है वो परमेश्वर है, वो अंदर मौजूद है, और वही चेतन सत्ता है, वही इस जिसमें जान है, उसी का नाम परमात्मा है। उसी के अंदर शांति है, बाकी चीजों में सुख और दुख है। सुख और दुख क्योंकि बदलते रहते हैं, सुख और दुख को द्वंद्व कहते हैं। देखो एक सूत्र है शास्त्रों का कि द्वंद्व जो होता है, जैसे दिन और रात है, द्वंद्व है, ठीक है, तो कभी अकेला ना दिन रह सकता ना अकेली रात रह सकती। दिन में से ही रात पैदा होगी और रात में से ही दिन पैदा होगा, इसको द्वंद्व चक्र बोलते हैं। मतलब दोनों जो है, दो चीजें अपोजिट चीजें हैं, दोनों दोनों एक दूसरे का निर्माण कर रही हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रही हैं। दोनों चीज द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब होता है कि एक दूसरे का निर्माण भी कर रही है और एक दूसरे को नष्ट भी कर रही है। तो इसलिए द्वंद्व चक्र में जीव कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जैसी स्थिति चाहता है। किसी वस्तु में देख लो, मुझे ऐसा सुख चाहिए बस, मैं शांत हो जाऊंगा। वो ऐसा सुख मिल भी जाए वो अशांत हो जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि तुझको जो चीज मिली है वो द्वंद्व रूप है, उस वस्तु में से ही दुख पैदा होगा। अब जिसको प्राप्त करके तुझे सुख मिला है ना, ऑटोमेटिकली वो वस्तु ही दुख का कारण बनेगी वो, क्योंकि द्वंद्व चक्र की द्वंद्व लीला है। इसीलिए द्वंद्व का मतलब ही होता है एक संघर्ष। तो संसार में तू कुछ भी प्राप्त क्यों ना कर ले, वो सिद्धांत जो महाजी वाणी में कह रहे हैं, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। देखो सिद्धांत आ गया, द्वंद चक्र का सिद्धांत है। और दूसरी बात संत रविदास से पढ़ो, क्या लिखिए, हर सुख दुख में बदल जाता है। और द्वंद सिद्धांत है या नहीं, मैं तो सुख की कमाई कर रहा हूं, मुझे ये किसी ने सिखाया क्या, जो सुख की कमाई कर रहा हूं ये सुख मिल भी गया तुझको, ये नहीं मिलेगा तुझे, भाग में है तो मिल भी जाएगा लेकिन वो दुख में बदल जाएगा, ये कोई नहीं सिखा रहा। आपने देखा होगा, चलो दूर की बात छोड़ो, बड़ी साधारण सी बात देखो, घरों में बच्चे खाने पीने के आम शौकीन होते हैं। जिस बच्चे को जितनी ज्यादा वैरायटी खाने की चाहिए, आपने देखा होगा खाने के लिए वो उतना ही ज्यादा बेचैन रहता है, शरीर उसका उतना ही ज्यादा रोगी रहता है। तो खाने का तो सुख है ना वैरायटी का, बच्चे के दृष्टि से वैरायटी का सुख मिल रहा है उसको, लेकिन वो सुख दुख पैदा कर रहा है, रोग के रूप में दुख पैदा कर रहा है, स्वभाव बिगड़ रहा है तेरा, नहीं मानसिक क्लेश पैदा हो रहा है, उसके रूप में दुख पैदा कर रहा है, हो रहा नहीं हो रहा उसमें। और पैसा वो ज्यादा खर्च हो रहा है, माता पिता के लिए दुख पैदा कर रहा है, अपनी आदतें बिगड़ रही हैं, भविष्य के लिए उसका दुख पैदा कर रहा है। हर एंगल से जो आज तो सुख भोग रहा है वो कितने उसके ऑफशूट्स निकल पड़े, कितने उसके ब्रांचेस निकल पड़ी दुख पैदा करने की। तो सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत ठीक है या नहीं, क्योंकि बालक को समझा सकते हो, या बालक को नहीं समझा सकते। इसलिए माता पिता करता है, जब तक उसके अंदर ये बुद्धि पैदा ना हो जाए तब तक उसको मर्यादा में रखे। क्लेश करेगा करे, अरे बाद में भी तो रोएगा वो, क्लेश करेगा लेकिन लोगों से तो बचा लिया माता पिता ने उसको, ज्यादा खर्चे की आदत से तो बचा लिया उसको, कितना भला कर दिया बच्चे का, उसको रोने दिया, दो बार रोगा चार बार रोगा फिर समझ जाएगा मुझे मिलेगी नहीं, संतोष मिलेगा। तो अब बताइए कि बच्चे को मर्यादा में रखना ये माता पिता का गुण है या पैसा खूब माया माता पिता ने कमाया है, कहते हैं मैंने तो बड़ा पैसा है बेटा, जो चाहे इच्छा पूरी कर ले, कर सकता है तू ऐसा? अपनी जिंदगी तो पैसा ज्यादा कमा के डूबोगी तूने, क्योंकि पैसा कमाने में वक्त तो खर्च किया होगा, जिंदगी तो गई तेरी और उसकी भी जाएगी। तो किस मदहोशी में किस बेहोशी में हम जीते हैं, गृहस्थ जीवन में और सामाजिक जीवन में, जरा देखो तो। तो जब तक ये सद्बुद्धि नहीं आएगी, ये निर्णय बुद्धि कर पाएगी आपकी? तो हर सूत्र हर वचन शास्त्र का ऐसी साधारण तरीके से पढ़ने वाला नहीं होता। महाजी ने लिखा है कि हर सुख दुख में बदल जाता है, हम ऐसे पढ़ जाएंगे इसको? जिसने इसका गहरा मनन कर लिया उसके अंदर से भोग वृत्ति ही गायब हो जाएगी फिर। अरे हर सुख दुख में बदलता है, मैं इसका ना सुख भोगू तो भविष्य के लिए दुख भोगने तैयार हो फिर, इसका ये कर क्या रहा हूं? तो इसलिए वो महाजी बात सीख लेगा कि प्रेमी मर्यादा, जिसने संत रविदास का मनन किया है, उसने पढ़ा नहीं है उसको, उसका मनन किया है गहरा, वो भोगवादी जीवन अपना ही नहीं सकता। तो खुद ही शर्म आ जाएगी, मैं ज्यादा कमा के क्या करूंगा, मैं इस वक्त को निकाल के मैं सिमरन में क्यों नहीं लगाता? फिर बहाने नहीं करेगा, क्या करूं, अरे दुकान पे 11 बजे तो ग्राहक खड़ा रहता है, धक्का दे दूं क्या मैं उसको? तो जिंदगी को हम मौत के मुंह में ले जा रहा है नहीं? बेहोशी में बहाना ग्राहक का कर रहा है, तेरे अंदर लोभ बैठा हुआ है, उसका शिकार हो रहा है, तो बेहोशी में। तो हम लोग ऐसी बहाने कर करके ये रास्ता छोड़ देते हैं और संसार को बड़े गंभीर, बड़े उसके लिए चिंतायुक्त रहते हैं, बड़े कर्तव्यपरायण रहते हैं। मैंने कई एम्प्लॉयज देखे हैं, हमारे प्रेमी हैं, बड़े सिंसियर प्रेमी हैं, अच्छे प्रेमी हैं, ऑफिस ड्यूटी के प्रति बड़े गंभीर हैं, वो बड़े गंभीर, 12 घंटे की भी ड्यूटी मिल जाएगी ऑफिस में करने को, बड़े गंभीरता से करेंगे और इस जीवन के लिए कोई संघर्ष नहीं, इस जीवन के लिए कोई संघर्ष। मैं तो ये कहता हूं कि ऑफिस में हमारे बॉस के बुरे बन जाते कोई बात नहीं, एक प्रमोशन रुक जाता, और प्रमोशन रुक के यदि सिमरन करने को मिल जाता तो ये तो नफे का सौदा था, तो नफे का सौदा, ये तो भूल ही, ये पता ही नहीं। महाजी कह रहे हैं कि सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी, सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। तो महाकर्म जो सबसे सर्वश्रेष्ठ था वो तो मैंने छोड़ दिया, निकृष्ट कर्म मैं पकड़ बैठा, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, वहां से प्रमोशन जल्दी मिलेगा मुझे, बॉस को तो खुश करना मेरा पहला प्रथम प्रथम कर्तव्य है, ये तो सोचा तरीका हमारे। मैंने उल्टा सूत्र अपनाया, मैंने अपने डायरेक्टर को नाराज कर दिया, मैंने अपने बॉस को पता नहीं कितनी बार नाराज किया होगा, मैं तो छुट्टी लेके तो वो नहीं आ जाता। और कभी मैंने ऑफिस में शो करने की कोशिश नहीं करी कि मैं काबिल आदमी, क्योंकि जहां आप जानते हो ऑफिस में क्या होता है, जहां आपने काबिलियत दिखाई तो वर्कलोड आपको बढ़ा दिया जाएगा, कहेंगे सारे काम यही कर ले क्योंकि अच्छी तरह करता है। तो अब अंदर से आदमी यदि चतुर ना बने तो स्वार्थी लोगों का शिकार हो जाएगा। लेकिन वहम में बैठा हुआ है, ये वहम में बैठा हुआ है, कह रहा है कि मैं कर्तव्य पर आया, आप इसे काम बिल्कुल सिंसियरिटी से करता हूँ, 12 घंटे डायरेक्टर कहता है 12 घंटे काम करता हूँ मैं, और तू इस चक्कर में यहाँ कर्तव्य परायण तो अपनाता है, और गुरु जिस कर्तव्य की बात कर रहा है उसको भूले बैठे हुआ है, इसे कोई वैल्यू नहीं है। कहता उसे फुर्सत मिलेगी तो जरूर करूंगा सुबह। अरे तू संघर्ष क्या कर रहा है उसके लिए, तो क्या संघर्ष कर रहा है उसके लिए? एक बार क्या हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक महीने के लिए आते ही था, तो मैंने एक अर्न लीव अप्लाई कर दिया, मैं साफ साफ लिख देता मैं आश्रम जा रहा हूँ, अरे हाँ एक महीने के लिए मैं आश्रम जा रहा हूँ, और एड्रेस होता ही था, एड्रेस लिखते लिखते। खैर हमारा जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसने एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट कर दी, वापस मेरे पास आ गए, एप्लीकेशन देखी मैंने, मैंने सोचा तो वो आपको मर्जी नहीं है मैं इस साल जाऊं, नहीं कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर बाद एक विचार आया कि यदि तेरे बेटे की शादी होती या कोई और इम्पोर्टेंट काम होता तो ऐसे ही रख के बैठ जाता है सेपरेशन को, फिर कोशिश करता ना। खैर बेचारा आया, मैं एप्लीकेशन लेके सीईओ के पास गया, मैंने सारी बात उनको समझाई। तो भाई देखो ऐसा है, बोले पूरे इंजीनियरिंग सेशन के इंचार्ज हो आप, स्वयं मैं ऑफिसर इंचार्ज था इंजीनियरिंग सेशन में, तो हम तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते। तो उस समय चांस की बात थी, सब छुट्टी पे थे या ट्रांसफर हो चुके थे, मैं अकेला ही था। तो मैंने कहा कि वो मैं व्यवस्था कर दूंगा सर। बोले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मैंने कहा प्रभु मालिक है। मैंने कहा हाँ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हमारा जो कोई ऑफिसर नहीं था, सारा इंप्रेस का चार्ज मैं अपने सुपरवाइजर को दे दिया, समझे, सब समझा दिया कैसे कैसे मैनेज करना है, समझे, और मैं अपने तपो में मैं जानता हूँ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उससे कह दिया तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, लेकिन रेस्पॉन्सिबल तो अल्टीमेटली परमात्मा है। उसने गड्ढे में धकेलना ढकेल देगा और काम बनाना है काम बना देगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये श्रेष्ठ कर्तव्य था। मैं जानता हूं ऐसा रिस्क कोई नहीं लेगा, जिसके अंदर ईश्वर की विश्वास की दृढ़ता होगी वो ये काम कर पाएगा। कुछ नहीं, वो एक महीने बाद गया मैं अपने, सब ठीक ठाक मिला। तो मैंने मात्र एग्जाम्पल इसकी दिया कि दृढ़ता क्या होती है संसार में, इस काम को एहसास होना चाहिए कि जरा संसारिक नुकसान के लिए कैसे हम लग जाते हैं और जिंदगी का होश ही नहीं है, मेरी जिंदगी नरक में जा रही है। इस प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाया, ये दुर्लभ जन्म प्रभु के सिमरन के लिए मिला है, ये मैं भूले बैठा हूँ। अरे जिस काम के लिए मानुष देह में लिए उसके लिए कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ, उसके लिए कोई कष्ट सहने को तैयार नहीं हूँ। दुनिया के आराम में मेरे कहीं खलल ना पड़ जाए, सब कुछ वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही मेरा कर्तव्य हो गया। तो जिंदगी ऐसे ही चली और फिर परमात्मा ने मदद करी कि 40 साल हो गए गैप नहीं हुआ कोई। तो इस दृढ़ता से जब आदमी, ये दृढ़ता आती है इन सूत्रों को एनालाइज करके, इनका गहरा मनन करके, पढ़कर नहीं आती है। तो मैंने गीता पढ़ी है, मैंने संतदास पढ़ी है, मैंने ग्रंथ पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ी है, कुछ नहीं। वहां जो सूत्र लिखा है उस पर गहरा मनन करना पड़ता है, वो एडॉप्ट करने के लिए, तो सुनाने के लिए भी लोगों को। यदि आपने अडॉप्ट कर लिया फिर बिना सोचे सुना दोगे आप। यदि आपने अडॉप्ट कर लिया वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, है नहीं, वो बिना किसी के सिखाए आप किसी को सुना दो, वो आपका जीवन का अंग बन गया, आपके स्वभाव के अंदर प्रवेश कर गया, वो आपका जीवन है। तो सतगुरु का जो ज्ञान है वो आपका जब तक जीवन नहीं बनता, बात तो साधारण सी है, ये बहुत गहरे सूत्र हैं क्या, लेकिन मनन करने में कितने गहरे हैं सोचिए। एक सूत्र पर अमल करने में जान निकल जाएगी आप। इसीलिए अमल करने से ये पांच नियम जो महाराज ने दिए, इस पर यदि कोई अमल करे तब महाराज कहते हैं कि बुद्धि में बल आ जाता है। वो बल क्या है? वो यही बल है प्रभु की याद करने में ये बुद्धि लगी रहती है और संसार का सेक्रीफाइस करने में लगी, ये बल है इसका। तो अब बताइए कि मन की सारी सोच ये वासना है और प्रभु का सिमरन ये निर्वास होना है, ये पूरी जो ईश्वर है वो वासना रहित है। तो ये जीव की बेचैनी का कारण वासना है और शांति का जो स्रोत है वो निर्वास होना है। जीव यदि ईश्वर को याद ही नहीं करेगा निर्वास होने के लिए, अपने रोग की निवृत्ति के लिए, तब कुछ भी ये नियम पालन करता रहे, कितना भी साधा हो जाए, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी सत्य बोल ले, कितना भी सत्संग कर ले, डिब्बा गोली रहेगा। ये चारों काम सिमरन की सफलता के लिए कर रहा है वो। इसलिए माई कह रहे हैं प्रेमी, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। इससे कैसे लापरवाह सकते हो, कैसे बहानेबाजी कर सकते हो? परिवार के साथ भोजन करते हो, यदि सिमरन छूटा है तो परिवार के साथ भोजन छोड़ दो, सिमरन पूरा कर लो, तब तो तेरी बुद्धि होश में है, नहीं तो बहानेबाजी। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे दैनिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट काम सिमरन है, वो मैं कैसे छोड़ सकता? तो ऐसी जब ये बलवान बुद्धि होती है, गंभीर बुद्धि होती है, निर्वास हो जाती है। तो इसलिए निर्वास होने का सूत्र यही है, बिना दृढ़ता के आदमी निर्वास नहीं हो सकता, वासना में फंसता चला जाता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए होश में जिए, पांच नियम को अपनाएं, इसी में कल्याण। ओम नमः शिवाय।